मंच पर आती और हमको एक तो आज जवाहर सागरजी महाराज के चरणों में नमोस्तु के साथ आप सब उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आज की धर्म सभा मेरी भावना की कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात महाराज श्री के सार्वजन पर मंगल में प्रवचन होंगे।
राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन करिगर ब्रह्मा या उसको साधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित उसी में लीन रहो, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो जिस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, से ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, रहे सदा संसंग उन्हीं का ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
नमोस्तु पूर्वानेक श्री साध्या विलायम श्री शुद्धभक्ति काय सुगम करो कारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितम् अज्ञान्तिमरान्ध्रानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचारि गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं रत्नकरणं श्रावकाचारनामधेयम् असमूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितम् मंगलं भगवान वीरा मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंडकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्तवासी यत्थं गणहरदेवेः गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान नमो वयम् शिरसा इच्छाए भन्ते सुद भक्ति का सगो को तसालोचिन अंग भंग पै ने पाऊ ने परि अम्य सुत परिमाणि ओ गो गय चूलिया चे सुत थे चुई गन कायम सहन इच काल मंच में पूजी में वंदा में नमन सामी दुखों को कम को इलाओ सुगे गंगम समाई वन्नम जिनगुण संपत्ति गो मच्छम नमस्तु पूर्वाणेक्षी साध्या विलयम श्रियाचर्य भक्ति का सुगम करो दिलदीपारोग्येभ्या सपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित पुनिदीभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीश गुण सम्मे पंच विहाचार करुण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंति संसार सायरं घोरं शिन्नन्ति अच्युकं जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्राभरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वारक पाठ पाठन भटा प्रीणन्तु माम साधुवा गुरुवा पान्तुमो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाई भन्ते आयरी भक्ति का हो सगो को तो सालोचन समानुसंधुसे समचरे जुतान पंच विहाचारण मैरियान अमराधि सुदनान उदेशान वच्छायान तीरण गुण पालन रयान सब साहुनम सयानिच कालन चेमी पूजे विवंदा मिनमन सामी दुखो को कम को वैलाव सुगे उन्नम समायम उन्नम जिन्नम संपत्ति को मच्छम नमः शिवर्धनाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरण रक्षावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में कैसे धर्म की शुरुआत हो, तो हमने सबसे पहले बहुत आसानी से समझा कि जब हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा होगी तब हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होगी, यानी इसके धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। धर्म क्या चीज है, तो हमारी अपनी आत्मा की जो स्वभावभूत अवस्था है वो ही हमारा धर्म है। अब ये धर्म आज वर्तमान में तो हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव वर्तमान में तो विभाव रूप में परिणत हो गया है। स्वभावात अन्यथावरणं विभाव, स्वभाव से विपरीत स्थिति का नाम विभाव है। अब उस विभाव से कैसे मैं बच करके पुनः अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकूं, इसके लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है वो भी धर्म कहलाती है। इस वस्तु स्वरूप के प्राप्त करने के लिए, इस आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम उपाय करते हैं वो सब धर्म में शामिल है। और हमारा आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि वितरागता हमारा स्वभाव है, राग द्वेष से रहित होना ही हमारा स्वभाव है। राग द्वेष हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो हमारी वैभाविक स्थिति है। अब राग द्वेष जो हमारी वैभाविक स्थिति है, ये कैसे समझ में आ रहा है, इसको समझना, राग द्वेष को वैभाविक समझना सारा प्रयास इसी का है। अपने स्वभाव को समझना और स्वभाव से जो विपरीत है उसको समझना। तुम्हारा स्वभाव तो राग द्वेष से रहित है, और विभाव क्या है, राग द्वेष है। जिन क्षणों में बड़ा मुश्किल है, और थोड़ा सा समय रह गया है, ये शुरुआत कैसे होती है मैं समझ नहीं पाता हूं। वो लोग समझदार होने के बाद भी शुरुआत से जानता हूं कि ये शारीरिक स्थितियां हैं, लेकिन इन पर संयम धारण करना भी हमारा पुरुषार्थ है। उसके बिना धर्म ध्यान नहीं होता, क्या करें। बहुत पुण्य होनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ इसके लिए एक तो साउथ फेसिंग होकर प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरा मन कितना बनता है मैं ही जानता हूँ। साउथ फेसिंग तो होनी नहीं चाहिए प्रवचन करने वाले के, लेकिन क्या करें है। इसके बाद भी आप इस तरह करते हैं तो पूरा मन जैसा मन बना के आते हैं वो सब जो है हो जाता कि आप इसको खत्म कर दें निपटा दें। ऐसा जितना आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए बस इतना ही कहूंगा मैं। आप सब समझदार हैं, इतना सारे दिन हो गए अपन को पढ़ते पढ़ते करते। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि रागद्वेष जो है वो बहुत हमारा विभाव है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये कब समझ में आता है? जब सच्ची देहु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती। सबको ये बात समझ में नहीं आती, सबको तो ये लगता है कि क्रोध इत्यादि करना ये तो सामान्य सी बात है, रागद्वेष कर लेना ये तो हमारे स्वभाव में है, नियति है, हम इससे बच ही नहीं सकते। तो कहते सबसे पहले ये पहचानो कि रागद्वेष हमारे नहीं है। तो फिर समय सार जी ने कहते कि रागद्वेष हमारे नहीं है, तो कहते किसके हैं? कहते बस ये कहो कि हमारे नहीं है, किसके नहीं हम आगे बताएंगे। लेकिन हमारे स्वभाव भूत नहीं है, हमारी वैभाविक स्थिति है, ऐसा मालूम पड़ जाने से हम छोड़ने की तैयारी करेंगे। और अगर हमें ये लगता रहा कि रागद्वेष हमारे ही है तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे? अब अगर रागद्वेष हमारे नहीं है तो फिर तब भी एक मुश्किल आ जाएगी कि ठीक है मान लिया रागद्वेष हमारे नहीं है, तब रागद्वेष करते भी रहो और मानते भी रहो कि रागद्वेष हमारे नहीं है, तो ऐसा दोहरा काम तो चलेगा नहीं। जब रागद्वेष करने वाला तो मैं हूं लेकिन रागद्वेष मेरे नहीं है, मैं उनको अपनी विभाव अवस्था में कर तो लेता हूं पर मेरी स्वाभाविक अवस्था वो नहीं है। तो देखो कितनी आसान बात हो गई, रागद्वेष मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मेरे नहीं है, और रागद्वेष का कर्ता तो मैं भी हूं क्योंकि संसारी अवस्था मेरी है। ये दृष्टि है, आप जिस दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहेंगे, द्रव्यार्थक न्याय की अवस्था अपेक्षा से देखेंगे, निश्चय न्याय से देखेंगे, तो क्या दिखाई पड़ेगा? रागद्वेष आत्मा के नहीं है। और अगर व्यवहार में देखें तो रागद्वेष कर तो हम ही रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, बहुत आसान सा उदाहरण आता है कि कोई पूछे कि बेटा किसका है, अब क्या जवाब दे रहे कि किसका है? तो कहते हम बता दे। अगर दादा के घर में है और कोई पूछे कि भैया जी किसका लड़का है, तो वो कहे हमारे लड़के का लड़का है। और नाना के घर में है तो क्या कहेंगे? हमारी बिटिया का लड़का है। तो बताओ वो झूठ कह रहे कि ये झूठ कह रहे? कहते दोनों ठीक कह रहे, दोनों का ही है। जहां जैसी विवक्षा है, तो कहते रागद्वेष तो पौद्गलिक है, पुद्गल कर्म के उदय में हमारे परिणाम रागद्वेष रूप होते हैं, इसलिए हम उनको पुद्गल के कहें। तो कहते सर्वथा पुद्गल के नहीं कह सकते, तो कहते जीव के कहो। कहते जीव के भी नहीं है सर्वथा, अगर जीव के रागद्वेष है तो शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। इसलिए यह निश्चय हुआ कि संसारी अवस्था में अनादिकाल से कर्म से युक्त है ये आत्मा, इसलिए रागद्वेष उसके वैभाविक परिणाम है। इन वैभाविक परिणामों को हटाने का काम भी हमारा है, और हट सकते हैं इस बात का विश्वास भी करना पड़े, ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा विश्वास करना और इनको हटाने का उद्यम करना, यहीं से धर्म की शुरुआत होगी। और ऐसे धर्म की शुरुआत करने के लिए अपन ने इतने दिन से बहुत सारी बातें सीखी हैं। ये तो बात को मालूम पड़ेगा जबकि ये सब सीखी हुई बातें अपन जीवन में उतारेंगे। जब फिर कोई सुनाने वाला नहीं होगा तब समझ में आएगा कि जो सुना है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। भरत चक्रवर्ती भी जब भगवान का मोक्ष हुआ था तो रोने लगे थे, तब लोगों ने कहा कि अब तुम्हारे पिताजी थे और मोक्ष चले गए, हर्षित होना चाहिए। कहते उसका तो हर्ष है लेकिन पीड़ा इस बात की है कि अब आगे मुझे तीन समय दिव्य ध्वनि कौन सुनाएगा? अब कोई जब दूसरे तीर्थंकर होंगे तब तक तो मैं स्वयं ही चले जाऊंगा, छाए एक समय दृष्टि है। ये धर्म ध्यान इस तरह बैठ करके करना आज के समय में आसान नहीं है। हम देखते हैं इतना चकाचौंध मची हुई है संसार की, किसको फुर्सत है कि आकर के बैठे और दो बातें धर्म की, अब लड़वा के लेने बिठा लो सो 10 आदमी लड़के तैयार हो जाए और भाई तू तू मैं हम लग मनो। धर्म की चार बातें शांति से सुनने में बहुत मुश्किल है, इसलिए कहता हूं कि इनका लाभ अपने जीवन में धर्म कैसे आएगा? अकेली क्रियाओं के करने से धर्म नहीं आएगा, पहले भीतर में इस बात का एकदम विजन, जिसको शब्द बोलता हूं आपने 100 दफे मेरे सुना होगा, विजन क्लियर होना चाहिए हमारे भीतर, हमारी दृष्टि क्लियर होनी चाहिए। जो जो चीज जैसी है उसका वैसा श्रद्धान, उसका वैसा ज्ञान, उसके अनुरूप वैसा आचरण। आचरण तो बहुत जल्दी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि की निर्मलता नहीं हो गए तो वो आचरण क्या करता है? थोड़ी देर के लिए आचरण करता है, फिर बाद में कषाय तो जानती है, कषाय मंद नहीं हुई और आचरण चलता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई खोट है। ये विचार हमें हमेशा करना चाहिए। मैं बहुत देखता हूं, बहुत आचरणवान लोगों को भी बहुत देखता हूं, ज्ञानवान लोगों को भी बहुत देखता हूं, लेकिन ज्ञान और आचरण दोनों के लिए अगर श्रद्धा का पुट नहीं है तो दोनों ही संसार में भटका देंगे। श्रद्धालु व्यक्ति चारित्र का पालन करे, ज्ञान पूर्वक करे, तो उसका चारित्र सोने में सुगंध के समान है। और अगर कोई व्यक्ति अकेला ज्ञान की ही चर्चा करता रहे और जीवन में आचरण नहीं आवे तो कहते उसका भी कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए दोनों का बहुत समन्वय बना करके अपन ने इतने दिन तक बहुत सारी चीजें सीखी। अब आखिरी है कि हम संलेख न लेने की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे समस्त तप का फल संलेखना है। कोई भी हो, श्रावक हो चाहे साधु हो, मरण तो सबको करना पड़ता है। अब वो मरण मेरा सुधर जावे, इस प्रकार की निरंतर चिंता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। चिंता या कह लीजिए, भावना कह लीजिए, ऐसी भावना कि मेरा मरण अच्छा होवे, आसानी से मेरा मरण होवे। आखिरी समय आसक्तियां न घेर लेवे मुझे, क्योंकि आखिरी समय जो चीज छूटने लगती है उसको पकड़ने की बहुत आकुलता होती है। जो जो पंचेंद्री के विषय और मन के विषय छूटने लगते हैं तो लगता है कि अब छूटे क्या कर लूं मैं इनको पकड़ के रख लूं, तो कहते ऐसा नहीं करना, छूटते हैं तो छूट जावे, क्योंकि मरण तो दोनों प्रकार के लोग करते हैं। आशक्त लोग भी मरण करते हैं और उस आशक्ति के फलस्वरूप फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन जो आशक्ति छोड़ के मरण करते हैं उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जो महाव्रत के साथ संलेखना धारण करे तो दो तिन्नी भाव गहनानी, जहन लेने सतट भाव गहनानी, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव लगेंगे और नहीं तो 2-3 भाव में तो उसका मोक्ष हो जाएगा, जो महाव्रतों के साथ आज भी संलेखना पूर्वक मरण करता है। ऐसे विरले साधक हैं, शांति सागर जी महाराज हुए, ज्ञान सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने की इस तरह की संलेखना 36-36 दिन तक जो है संलेखना चली, परिणामों की निर्मलता बराबर बनी रही। आखिरी समय मुख्य तो वही है। मरण 5 प्रकार का होता, एक बाल बाल मरण होता, समझ चुके होंगे आप, पहले भी सुना होगा कई बार, बाल बाल मरण, जब अपन को न श्रद्धा आए न कछु आचरण आए वो मर गए, बिना श्रद्धा बिना आचरण के मर जावे जीव, तो कहते बाल बाल मरण है। बच्चों में भी बच्चों का गया बीता मरण है, और कहते सम्यक दर्शन हो जावे और व्रत नियम नहीं ले पाए और मर गए, तो कहते बाल मरण है। अब ये बच्चों का मरण है, इसको भी बाल मरण कहा? सम्यक दर्शन के साथ बिना किसी आचरण के, कोई व्रत नियम संयम नहीं लिया, अकेली सच्ची श्रद्धा है सच्चे देवगुरु शास्त्र पे, कहते बाल मरण है। और अगर देश व्रत ले लिया, अनुव्रत के साथ में मरण किया, सम्यक दर्शन के साथ अनुव्रत है फिर मरण किया, तो कहते ये बाल पंडित मरण है। बाल पंडित पूरी तरह पंडित नहीं है, कहते महाव्रतों के साथ संलेख न लेवे तो पंडित मरण है, और केवली भगवान निर्वाण प्राप्त करें तो कहते पंडित मरण है। ऐसे 5 मरण जो है, और वैसे तो आवीची मरण रोज हो रहा है। आवीची मतलब जैसे लहरें आती हैं और समाप्त हो जाती, आती हैं समाप्त हो जाती, तो ऐसे तो अपन रोज रोज मर रहे, रोज जितनी सांसें निकल गई उतनी अपनी जीवन कम हो गया, ऐसा आवीची मरण तो अपना निरंतर हो रहा। उस आवीची मरण को भी अगर हम सावधानी से विचार करें कि मेरी कोई सांस व्यर्थ न चली जावे, ऐसा व्यक्ति ही आखिरी समय पर संलेखना की तैयारी कर सकता है। अभी से कर सकते, चीजों के प्रति आसक्ति कम करो, खाने पीने की आसक्ति कम, जो मिल गई ठीक है भैया, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ऐसा जीवन भर जिसने किया होगा आखिरी समय वो आसानी से छोड़ देगा। और इसको जिसको रोज नए नए प्रकार की नाना प्रकार की चीजें चाहिए कि अब जो आइटम भाव चाहिए उनके बिना भाव ही नहीं रहो, तो कहते ऐसे व्यक्ति की आसक्ति बहुत है, आखिरी समय पता नहीं वो क्या करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपको एक उदाहरण बताऊं, एक संलेखना हुई थी नैनागर में, ब्रह्मचारी जी थे, व्रत हो गए थे, लेकिन लिखा है कि आखिरी में निर्यापकाचारी का फर्ज है कि वो उसकी कोई आसक्ति हो तो उसको निकाल देवे, भोजन के प्रति आसक्ति रह जाती, कोई कितनी भी बहुत पहुंचा हुआ हो गए आखिरी में बहुत आसक्ति हो जाती, हमने तो बहुत गौर से देखा भोजन के प्रति, तो छोड़ी हुई चीज को ग्रहण करने का भाव तक आ जाता। तो कहते कि आखिरी में 56 प्रकार के भोजन, जैसे 56 व्यंजन नहीं कहते अपन, कहते सब प्रकार के भोजन उनके सामने लाके रखे जाते हैं कि कोई लेना हो तो ले, अभी कुछ आकुलता नहीं है, ले लो लेना हो, अब त्याग भी है फिर भी सामने ले आओ तो हो सकता मन में भाव आ जाए, तो कहते आ जाए तो ले लो, लेकिन उस भाव के साथ नहीं मरण करना। तो क्या हुआ कि एक दिन थाली में सब परिचर्या के लिए जाते थे, तो उनकी थाली में एक दिन भूल से सेव फल तो लेते नहीं थे, वो सेव फल आ गया थाली में। अब उनको वो दिख गया, त्याग था इसलिए लिया तो नहीं, मगर भाव उनके ऐसे लगे कि ये ले लेते। अब परिचारकों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम लोगों ने जाकर के आचार्य जी को इशारा कर दिया, लगता है ब्रह्मचारी जी के मन में सेव फल लेने का विचार है, क्या करें, अरे दे दो उसमें, आचार्य ने कहा दे दो, हमारा कह देना कि महाराज ने कह दिया, त्याग भी है फिर भी आखिरी समय है इसलिए महाराज ने कह दिया कि ले सकते हो, लेना हो तो ले लो। अब जो है दूसरे दिन सेव फल उसमें, और जैसे उनको देने लगे तो हमारा तो त्याग है, नहीं आचार्य ने कह दिया है त्याग है तो क्या हुआ, आप इतना थोड़ा सा लेने में क्या दिक्कत है, आचार्य ने छूट दे दी है, तो उन्होंने इतना सा ले लिया, भावना तो थी मन में इतना ले लिया, अब शरीर ग्रहण तो करने योग्य है नहीं, और थोड़ा सा खाया आधा नीचे गिर गया आधा मुंह में चला गया, उनको मन में बहुत घृणा हुई, कह रहे देखो मैंने त्यागी हुई चीज ली, शरीर ग्रहण नहीं कर रहा और मेरी आकांक्षा तो देखो इतनी है, शरीर में भीतर प्रवेश नहीं कर रहा, बाहर आकर के निकल गया, आधा नीचे गिर गया आधा मुंह में था सो वो भी बाहर आ गया, क्योंकि भीतर जाने योग था ही नहीं, पानी लिक्विड लिक्विड जा रहा था, अब ऐसी कड़ी चीज कैसे जाएगी भीतर। तो उसके बाद वहां से सीधे कुल्ला करके और आचार्य श्री के पास बैठे थे, आचार्य श्री तो तैयारी बैठे थे कि अब देखें क्या इनके मन में विचार आते, फौरन आकर कहने अभी तक तो त्याग हमने सच्चा नहीं किया था, अब आज से हम समस्त पदार्थों का त्याग करते, पानी अकेला रख के बाकी सबका त्याग करते, जब शरीर ग्रहण नहीं कर रहा तो मैं ग्रहण करने की आकुलता क्यों करूं, आदि काल से यही तो करता आया, वो उनके लिए जागृति आ गई। ऐसा भी कई बार आखिरी समय पर और करना पड़ता है संलेखना, इसलिए जीवन भर जिसने तैयारी करी होगी वही संलेखना कर सका सकता, अपन जा सोचे कि जिंदगी पर चाहे जैसे जियो आखिरी समय अपन कर लेंगे, तो कहते ऐसे नहीं होने वाला, आखिरी समय तो और मुश्किल होगी, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं लेकिन मन प्रबल हो जाता है, मुश्किल ये है मन वाले जीव के साथ मुश्किल है कि इंद्रियां तो निर्बल हो जाती, अब इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं रह गई लेकिन मन की प्रबलता बहुत रहती। वो कहता कि लो रसना इंद्री को जीतना बहुत कठिन होता, उसमें तो लिखा है कि जो रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री को जीत लेता है सच्चा साधक तो वो ही है, जैसा आ गया वैसा ग्रहण कर लिया, लोलुपता नहीं होनी चाहिए, जिसकी लोलुपता जितनी कम है वो सब लेख न ले पाएगा, एक बात बहुत आवश्यक, दूसरी जिसकी कषाय मंद है वो संलेख ना ले पाएगा, जीवन भर जिसने मंद कर स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव से जिसके भीतर मृदुता है जो कषाय ज्यादा नहीं करता, आती भी है तो बच्चों जैसा छने पाया उसके बाद ज्यों का त्यों साफ सुथरा मामला, वो व्यक्ति ही ले सकता। दो चीजें हो गई कि भोजन के प्रति लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि संलेखना की तैयारी कैसे करें, तो भैया हमने तो अभी तक इतनी दो चीजें समझी कि धीरे धीरे अपनी भोजन की आसक्ति कम करो, भोजन कम करो जाने कह रहे आसक्ति कम करो, कि जय चीज चाहिए जय क्या चाहिए जो आ गई ठीक है उसके साथ पेट भरना है, गड्ढा है गड्ढे में पूरा भर जाने दो, बस 20 मिनट को काम है हम तो जा जाना 25 मिनट को जितनी देर के लाने, जैसे हम अपने हिसाब बता रहे हैं कि 25 मिनट का काम है उतनी देर में आप जल्दी से जो है डाल दो और जहां भर गए तो फिर चाहे तुम्हारी अच्छी से अच्छी रसगुल्ला भरो जाओ तो कोई नहीं देख रहा, और बस शुरू शुरू में तो जा भी और जो भी और जो भी और दुनिया भर की चीजें तो फिर ले जाओ चाहे जितनी ले जाओ कम तो थोड़ी है। तो कहती ऐसी आसक्ति है तो ले लिया, अपने शरीर के योग्य है तो ले लिया, लेकिन आसक्ति नहीं है नहीं तो क्या होता है कि एक दिन नहीं मिले चीज तो मुश्किल हो जाती। शरीर के अनुकूल लेना तो ठीक है, मन के अनुकूल नहीं लेना, शरीर के अनुकूल तो लेना, लेकिन मन के अनुकूल तो कभी नहीं ले पाओगे, न मन कभी तुम्हारा उससे भरने वाला है। इसलिए एक प्रयास तो ये करना संलेखना का, जीवन भर करना पड़ेगा, और दूसरा प्रयास कि कषाय आदि गई मान लो तो जल्दी शांत हो जावे, ऐसा उपाय कर, क्योंकि ये बाद में परेशान करेगी। अभी से अगर अभ्यास नहीं करूंगा, कषाय आ गई, जल्दी से शांत कर लो भैया, छोड़ो अपन को क्या करना। वर्णी जी का एक सेंटेंस जो मैं आपको दो तीन बार सुना चुका, फिर कहता हूं, कोई बात कछु हो भी जावे और कोई जाके कहवे कि ऐसे ऐसे होगा, अरे भैया अपन को क्या करने, होगा हो जाने खत्म। बहुत बड़ी इसमें बड़ी बात हो गई, तब बड़ी बात हो गई तो क्या करें, चार पांच दिन तक उनकी चर्चा करते रहेगा कि बड़ी बात हो गई, बहुत अरे हो गई खत्म, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो दो मिनट के अंदर जो है कहती थी हो गई खत्म, हो गई अब आगे नहीं करने, बस इतना ही। ऐसे जो है अपनी मंद कषाय करना तभी हो पाएगा। और 12 वर्ष की संलेखना जो मैंने आपसे कहा था और उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं भूल जाता हूं बार बार, पर बहुत आसान है। शुरू के 4 वर्षों में काय क्लेश नाम का तप किया जाता है। काय क्लेश अर्थात शरीर पर विभिन्न प्रकार से अपने शरीर की शक्ति पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के अनशन करना, ऊनोदर करना, ये सब इसमें शामिल होंगे। ध्यान जो है एकाग्र होकर के एक घंटे तक एक ही आसन से बैठना ताकि आसन सिद्ध हो जाए। लेटना भी आसन है, आप एक करवट से कितनी देर लेट सकते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में जैसे लेटे सो वैसे लेटे रह जाना है, फिर बुलाना पड़ेगा कि ऐसे करवा दो। 5-5 मिनट में हमने तो देखा आखिरी के 3 दिन में, कोई कितने भी हो अच्छे संलेखना लेने वाले, आखिरी के 3 दिन में जो छटापटी होती है हमने आंख से देखी, झट 2 मिनट में ऐसी, 2 मिनट में ऐसी, सीधे कर दो, ऐसे कर दो, बस दिन एक व्यक्ति को बैठे। 12 बजे से हमारी ड्यूटी लगती थी, 12 से 1 तक का हमारा समय था, और उस एक घंटे में क्योंकि हम लोग 10-12 साधु थे, वराक सागर जी महाराज की संलेखना चल रही थी, उनने बदामी लाल उनका नाम था, हमने पूछा हमसे कि आपको बदामी नाम क्यों रखो, अरे कहने हमने तो काम पे तुम्हारी पल्लेदारी करी और हम क्या करते 4 बदाम भर लेते और बूरो, सो 4 बदाम और बूरो। पल्लेदारी में अब चाय नहीं पीते वो समय लोग, पुराने लोग, बस 2 बदाम निकाली बूरो मिला खा ली, जित रेस्ट मिला सो फिर 2 बदाम खा ली। दिन भर में कहने हम बदाम खाते थे, हमारा नाम ही रखता बदामी लाल, अच्छा खासा 80-90 शरीर के बाद भी ऐसा नहीं, कोई सोच सकता कि 80-90 साल के अपना काम सब अपने हाथ से, और उनको भी संलेखना के समय आखिरी समय पर हमने देखा 2-2 मिनट में ऐसा कर दो ऐसा कर दो, क्योंकि एक आसन से रहा नहीं जाता, बैठना तो दुर्लभ है लेटना भी एक आसन से, सब पूरे जो है बैड शूज जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। आखिरी समय परमाणु की बनी रहे, बस अकेले हमने धीरेन्द्र वर्मी को देखा, सिंगल आपके यहां तो रहे वो कैसा शरीर था, और इसके बाद भी सामायिक में ऐसे बैठे, हम तो फिर भी जब ज्यादा बूढ़े नहीं है, लेकिन वो ऐसे बैठे तो बैठे 2.5 घंटे तो 2.5 घंटे, ऐसा वो नहीं करते कि ऐसा कर लिया धीरे से, एक सीधा। इतनी उम्र के बाद 62 साल के थे, उनकी भी संलेखना मैंने देखी अपने सामने। मैं आपसे वराक सागर जी की बात कर रहा था, आज उदाहरण सुनाता हूं कई, ताकि अपने जीवन में ये प्रथमानुभव है, उससे हमारे जीवन में साहस आएगा कि हमें भी अपना मरण जो है इसी तरह करना। उनका क्या हुआ कि खड़े होने में जो है, अभी तो आपको ऐसा लगता है देखने वाले को कहा महाराज जी को का दिक्कत, जल्दी से खड़े हो गए, अंजलि बना ली, फटाफट ले लिया, उनको तैयार बैठे जैसे पंथामे में सिखाते वैसे हाथ में सिखाते, सो जो अभी देख रहे हैं छो लग रहा, जब तबीयत खराब हो जाती है सो मैं अंजलि बनाता है, उनमें जो अंजलि ऐसी जाता है ऐसी जाए सो सबरों नीचे गिर गए, वहां तक तो पहुंचते नहीं है जी। आपको हम मुंह की बात बताते, जब इसमें कमजोरी आती है तब ये पूरा हाथ यहां नहीं पहुंचता, ऐसा हो जाता और सीधे नीचे गिर जाता, मुंह नहीं आता, तो जीव निकल आती है। जीव निकलना मतलब क्या, मैं ग्रहण कर लेता, उतनी दूर से गया है मैं उसको ग्रहण कर लेता, जी आकुलता है, और उनको उस समय जो है पानी लेते और ऐसा निकल जाता, और उनके परमाणु में उस समय देखने की स्थिति बनती कि भीतर प्यास तो बहुत है और ये पानी जा नहीं रहा भीतर, वे बार बार चेष्टा करते और पूरा पानी गिर जाओ तो अंतराय है, अंजलि में से पूरा पानी नीचे गिर जाओ तो बैठ जाओ। अब उनको जो है एक दो बार तो उन्होंने बहुत ट्राई करी कि थोड़ा बहुत तो मुंह में लग जावे, गिरे हो जावे थोड़ा सा, लेकिन नहीं हुआ। आचर्षि वहीं खड़े हैं, धीरे से कहा कहले महाराज, अब महाराज हैं कहले महाराज, अरे लाओ तो गिलास ले आओ महाराज, गिलास में से ले लो, आपको वो जाने रहा अभी तक, इतना कह दिया। हम लोग जो है सब खड़े थे, अब थोड़े सत्य में आ गए कि परीक्षा की घड़ी है, अब देखेंगे क्या कहते हैं। गिलास लिया, गिलास लिया, तो हम लोग जो है श्रावकों से कह करके पानी का भरा हुआ गिलास लो महाराज गिलास, उन्होंने इनकार कर दिया। यही तो आचार्य सुनना चाहते थे उस समय, बहुत आशीर्वाद दिया मन ही मन, और फिर एक बार और ट्राई करके देखा, नहीं गया तो दोनों हाथ से पकड़े हुए थे, तुमने दबा दिया कि आप लोग छोड़ दो बैठ जाएंगे, जब शरीर ग्रहण नहीं करता है तो मैं क्यों आकुलता करूं, वो गिलास से तो लूंगा नहीं, पानी पात्र का जीवन भर का नियम है, पानी पात्र से ले पाऊंगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और नीचे बिठा दिया, उसके बाद उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया और तीन दिन के बाद पूरी संदेखना हो गई। अब उस समय अगर उस परीक्षा में चूक जाते, हम लोगों ने पूछा आचार्य श्री से कि अगर उस समय चूक जाते तो कहते संदेखना समाप्त कर देते हैं, हम सबको हटा देते वहां से, कोई परिचर्या नहीं करेगा, इनने गिलास में पीने की भावना कर ली, अब साधु नहीं रहेगा। इतनी कट्टरता भी है और दोनों के अंदर इस तरह की स्थिति, ऐसी ये संलेखना के समय इस तरह की मुश्किलें आ सकती। उनकी संलेखना के बारे में आपसे कहूं, एक हाथी की संलेखना भी पड़ी मैंने, वो सुनाता हूं आपको, बहुत अद्भुत है। और ये जनम रोमी जी जो आपके यहां पर रहे हैं और आप परिचित हैं उनसे, उनकी संलेखना 62 वर्ष की उम्र में और 23 मई को समाप्त हुई थी, सन 83 की बात है, ईसरी में, तब उनको हम समय सारजी सुनाने गए, आचार्य श्री ने भेजा कि अच्छे प्रेम से समय सारजी सुनाना, हमने उनको 14 गाथाएं सुनाई। फिर हमने कहा पूछ तो लें, बहुत विद्वान है, हमने तो इतना काम किया, इनको हमारी गाथा सुनाने से कुछ लाभ है कि नहीं, हमने पूछा वर्णी जी और सुनाएं क्या, तो बोलते महाराज गाथा तो ये कहीं पर्याप्त है, अब बताइए। मैंने कहा फिर तो जो है इनको 14 गाथाओं की आवश्यकता नहीं, एक ही गाथा पर्याप्त है कि जो अपने आत्मा में है सो ससमय है, जो पर पदार्थों में है सो पर समय है, और पर समय सो संसार है, ससमय सो मोक्ष है, हो गया काम। एक ही गाथा पर्याप्त है, दूसरे नंबर की गाथा है वो मंगलाचरण के बाद। ऐसी उनकी जागृति परमाणु की थी। और आखिरी दिन की बात आपको बताऊं, 10:30 बजे हम लोग उनकी परिचर्या में आहार करके आए थे, साधु आचार्य श्री को लेने चले गए, तब तक धीरे धीरे उनको 15-20 सीढ़ियां उतार के नीचे ले गए, नीचे तक वो गए, उनने फिर दूसरी बार पूछा आचार्य श्री आ गए क्या, तो देखा जब तक आई गए थे ऊपर खड़े थे, नीचे से उन्होंने और आचार्य श्री को ऊपर देखा और कहा नमोस्तु महाराज, बस हो गया काम। ऊपर दर्शन करके मुस्कुराहट, इतनी जबरदस्त मुस्कुराहट थी, आचार्य श्री को देखा, आचार्य श्री ने वहीं से हां कैसा आशीर्वाद, नमोस्तु महाराज, पूरे कंठ पूरा कोई अवरुद्ध नहीं है, कंठ पूरे ठाट से नमोस्तु कहा, मुस्कुराहट ली और हल्के से चेहरा ऐसा हुआ। जब तक हम लोग नीचे नीचे रखें तब तक तो जीव जो है दूसरी जगह जा करके और अपना शुरू हो गया। इतने आसानी से प्राण कौन छोड़ सकता है ये बताओ, मुख्य बात तो ये है, इतने आसानी से प्राण छोड़ने वाला कोई सच्चा साधक हो सकता है जिसने शरीर से आसक्ति छोड़ दी होगी, वही कर सकता है, वरना तो शरीर की आसक्ति ऐसी है कि शरीर छोड़ने में दिक्कत होती है। देखो जिस चीज की आसक्ति हो वो चीज छोड़ने में दिक्कत होती कि नहीं अपन को, और जिसकी शरीर की आसक्ति है तो शरीर छोड़ने में दिक्कत होगी, उस पर ग्रिप बनी रहेगी, पकड़ उस पर मजबूत रहेगी, छूटने मुश्किल होगी। ऐसी संलेखना भी मैंने देखी है जिसमें शरीर ऐसा ऐसा ट्विस्ट होता चला जाता है जैसे कोई निचोड़ करके उसमें से निकाल रहा हो, क्योंकि पकड़ बहुत है, इसलिए शरीर में से धीरे धीरे प्राण निकलते हैं, इधर पैरों से शुरुआत होती, अंगूठे में हल्का सा चलन होता, हम तो बहुत गौर से देखा, दूर खड़े होकर नमोकार पढ़ते हुए ट्विस्टिंग होना शुरू होती है, पूरे शरीर में से ऐसे जैसे निकल रहा हो, और आखिरी में इधर टच किया मैंने और यहां तक चल रही है पूरी, एक एक नब्ज जो है बीच की चलती रहती है, आखिरी में ये वाली चली और हल्का सा झटका और प्राण निकल जाते हैं। उस समय क्या परिणाम होंगे उसी पर निर्भर करता है कि आयु का, इतने आसानी से आपको बता रहा हूं मरण के बारे में, मैंने बहुत निकट से मरण को देखा, अपने जीवन में भी देखा और दूसरे के जीवन में भी देखा, मरण से डरने वाली बिल्कुल स्थिति नहीं है, न मरण की बात से डरना, मरण तो बहुत अच्छी चीज है, अगर एक बार शांति से मरे वीरतापूर्वक, कह रहे कहते कि कायर भी मरता है बलवान भी मरता है, कहते अगर मरो तो वीरतापूर्वक मरो कि हमने छोड़ा हमारा था ही कब, इस तरह की भावना से जो मरण करता है वो शरीर से पार हो जाता है। तो ऐसी ये संलेखना 12 वर्ष में क्या करते हैं कि पहले शुरू के 4 वर्ष में काय क्लेश नाम का, अर्थात जिससे शरीर में सहन शक्ति बढ़ जावे, इसलिए 4 वर्ष तक ऐसी साधना करते, अगले 4 वर्ष में फिर रस परित्याग करते हैं ताकि आशक्ति कम हो जाए। नीरस भोजन और पेट भर के खाओ, देखें कैसे खाओ। ये अलग प्रकार की साधना है, बहुत कठिन, हमको तो बहुत अभी आसान नहीं लगी, कठिन लगी, कि भोजन तो पूरा करना, कम नहीं करना है, और नीरस करना है, रस नहीं लेना, भाएगा नहीं लेकिन खाओ पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं भारा से छोड़ के आ गए, पूरा खाओ, जैसा रोज लेते हैं उतने ही लो, पर नीरस लो। कहते ऐसी रस परित्याग की साधना करना 4 वर्ष तक, 8 वर्ष निकल गए, अब अगले 2 वर्ष में आचाम्ल और निर्विकृति, निर्विकृति मतलब छाछ, और आचाम्ल मतलब चावल का माड़, तो वो माड़ और ये निर्विकृति, बस 2 साल तक उसी पर चल रहा है काम, और 10 वर्ष हो गए। फिर अगले 1 वर्ष में निर्विकृति भी छोड़ दी, एक कोई रख लिया, आचाम्ल रख लिया, थोड़ा सा माड़, उसकी सीम माने क्वांटिटी कम करते चले जाते हैं, 1 साल तक क्वांटिटी कम कर दी, इसके बाद फिर अगले 6 महीने और 6 महीने, 2 बचे, अगले 6 महीने में मध्यम प्रकार के तप करना। अब शांतिपूर्वक जो है, भोजन तो उतना ही रखा है लेकिन अब तपस्या जो है अपनी साधना अधिक बढ़ा दी, और आखिरी में तो उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट तप मतलब एक दिन मार लिया है, वो को 2-4-5 दिन तक नहीं लिया, 10 दिन तक नहीं लिया, फिर एक आध बार थोड़ा सा पानी ले लिया, फिर 10-15 दिन नहीं लिया, ये कहलाएगी उत्कृष्ट तपस्या। उस बीच में प्राण निकल जाए तो निकल जाए, हमारा क्या। ऐसा जो है 12 वर्ष की पूरी संलेखना, अभी है एक माता जी जिनके थोड़े वर्ष और या महीने कुछ रह गए हैं, 12 वर्ष की उन्होंने समाधि ली थी, तो 12 वर्ष में मैंने एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये ना समझिएगा कि प्राणों को 12 वर्ष में अपन को निकालने हैं जिस किसी तरह, ऐसा नहीं, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अब इतनी उम्र हो गई, अब इतना समय शेष रहेगा, इसके भीतर भीतर तो प्राण निकल ही जाएंगे, तो अपन ने उतनी सीमा बना दी। उत्कृष्ट है 12 वर्ष, वैसे तो अंतर्मुहूर्त है, जैसे ही मरण उपस्थित हो गए तो सब प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, ये अपन पढ़ के आए हैं। आखिरी समय में क्या क्या सावधानी रखना, आज इसका एक और श्लोक है, वो अपन पढ़ते कि आखिरी समय कैसे करना, वो तो रह गई एक हाथी की संलेखना, वो मेरे पास पुस्तक भी है, वो फॉरेनर ने लिखी, एक फॉरेन राइटर ने, उसके सामने वो शिकारी रहा, उसके सामने संलेखना ली थी हाथी ने, वो अभी सुनाता हूं, पहले इसको थोड़ा अपन पढ़ लें। जीवित मरणाशंशे भय मित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचारः पञ्चजनेन्द्रैः समादिष्टान्। जिनेन्द्र भगवान ने ये 5 अतिचार कहे हैं, ये दोष लग सकते हैं संलेखना के समय सावधानी रखना। कहते जीवन की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, मेरी संलेखना अच्छी चल रही है, खूब लोग सेवा कर रहे हैं, अरे मैंने जल्दी कर दी, थोड़े और जीवन रह सकता था, ऐसा विचार नहीं करना। संलेखना ग्रहण कर लेने के बाद अब जीवन की आकांक्षा नहीं रखना, और कहते मरना संशय, और ऐसा भी नहीं कि अब हमसे इतना दुख सहा नहीं जाता, इतनी पीड़ा है, इस अच्छे तो जल्दी मर जाते, तो कहते ऐसा भी नहीं, न जल्दी मरने की आकांक्षा, न ज्यादा जीने की आकांक्षा। कहते ऐसा जैसे सूरज उगता है और धीरे धीरे डूबता चला जाता है, न उसको उगने की जल्दी है, न उसको डूबने की जल्दी, उसका समय है, वो अपने समय से उगता है और धीरे धीरे क्रम क्रम से जो है डूबता चला जाता है, इसी तरह से जो है धीरे धीरे अपने प्राण छोड़ निकलते हैं तो निकलते चले जाएं, न जल्दी है और न देरी की कोई बात है। ऐसे जीवन और मरण दोनों की आकांक्षा से रहित होना, अगर ऐसी भावना आ जाएगी तो संलेखना में दोष लग जाए। और भय हो गया, भय कैसा होता, भय तो 7 प्रकार का होता, यहां मुख्य रूप से इहलोक और परलोक भय लिया है, तो कहते हैं कि उस समय ऐसा विचार आ गया कि देखो जल्दी प्राण निकल जाएंगे तो क्षुधा वेदना इत्यादि प्यास ये सब सहन नहीं करना पड़ेगी, इस लोक में इस प्रकार का भय हो गया। और संलेखना तो ले ली है मैंने, मगर अब क्या पता आगे जो है इसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुनते तो हैं कि बहुत अच्छा फल मिलता है संलेखना का, लेकिन मन में संदेह हो गया कि क्या पता मिलता कि नहीं। तो ये परलोक के प्रति भयभीत हो गए। कहते ऐसा नहीं, परलोक भय का एक अर्थ ये भी है कि अपन आगामी जीवन के लिए भयभीत हैं कि बिगड़ने जाए, ये अलग बात है, लेकिन आगामी जीवन में मुझे सुख सुविधा मिलेगी कि नहीं, इस प्रकार से भयभीत होना, कहते ये ठीक नहीं है। तो ऐसे भय से मुक्त इस लोक में मुझे प्रशंसा मिले, या कि अगले जीवन में मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिली, मैंने संलेखना ली, इस प्रकार का कोई आकांक्षा और भय नहीं। मित्र स्मृति, आखिरी समय होता है कि सबसे एक बार मिल लेते, देख लेते सब किला में। तो कहते अब ऐसा विचार नहीं लाना, अपने मित्रों के प्रति आखिरी समय अनुराग नहीं रखना, सबका अनुराग छोड़ देना। और फिर कहते निदान भावी भोगों की आकांक्षा नहीं करना, मुझे जो है इस संलेखना के द्वारा स्वर्ग का वैभव मिल जावे, ऐसी कोई आकांक्षा मन में नहीं रखना। ये पांच दोष जो है संलेखना में लग सकते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसकी तरफ इशारा कर दिया है। संलेखना लेने वाला जीवन भर इस प्रकार की भावना भाए तो ऐसे दोष नहीं लगेंगे। निश्चेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखांगुनिधिं निपिवतु पीतधर्मा सर्वे दुःखैरनादिरो सर्वै दुःखैरनादिरो पीतधर्मा सर्वै। कहते हैं धर्म का पान करने वाला कोई धर्मात्मा जो संलेखना ले रहा है वो सब दुखों से बच जाता है अगर संलेखना लेता है तो। और निस्तीरम सब दुखों से रहित, और जिसका कोई पार नहीं है ऐसे अपार सुखांगु निधिम, कहते सुख रूपी समुद्र में। और निश्चेयस सुख अर्थात स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, इन दोनों ही दुस्तीरम अभ्युदयम, अभ्युदय मतलब होता स्वर्ग का सुख और निश्चयस मतलब होता मोक्ष का सुख। तो कहते जो व्यक्ति ऐसे शांतिपूर्वक संलेखना का फल बता रहे हैं कि संलेखना लेता है उसको दो ही चीजें मिलती हैं, चाहिए तो मोक्ष है लेकिन क्या करें बीच में रुकना पड़ रहा है। तो कहते स्वर्ग में रहेगा उसके बाद आकर के और पुनः पुरुषार्थ करेगा और मोक्ष पालेगा, तो दोनों चीजें मिलती हैं। सम्यक दर्शन और व्रत नियम संयम के साथ जो आखिरी समय संलेखना पूर्वक मरण करता उसको स्वर्ग का सुख भी मिलता है और मोक्ष का सुख, दोनों ही सुख मिल जाते हैं। जन्म जरा मैं मरणई शोकैर दुःखैर भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणम् शुद्ध सुखम् निश्चेयस निश्यते नित्यम्। स्वर्ग का सुख तो समझ में आता है लेकिन मोक्ष का सुख कैसा है? तो कहते हैं जन्म जरा मैं मरणई है, किन किन चीजों से रहत है? कहते फिर जन्म नहीं लेना, बुढ़ापा नहीं आना है, और मैं अर्थात रोग नहीं आना है। जन्म नहीं होना, मरण नहीं होना, बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग शोक नहीं आएंगे, शोक भी नहीं, दुख भी नहीं, भय भी नहीं, इन सब से जो मुक्त शुद्ध सुखम। अपन को तो अनुभव है इंद्रिय सुखों का, उन्हीं में अपन सुख मान के बैठे, लेकिन ऐसा भी एक सुख होता है जो अतीन्द्रिय सुख है, वो वास्तव में आत्मा में होने वाला सुख है, वही सुख जो है निश्चेयस अर्थात मोक्ष का सुख तो वही है। कैसा है? तो कहते नित्य है। अपना सुख तो ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए है फिर उसके बाद दुख है, सुख के पीछे दुख लगा हुआ, कहते वो निखालिस है, उसके बाद कोई दुख नहीं होता, अनंत काल के लिए सुख प्राप्त हो जाता, ऐसा जो है निश्चयस का सुख है अर्थात निर्वाण का सुख है। मैं आपसे जो बात कह रहा था कि एक हाथी ने भी संलेखना ली थी और एक फॉरेन राइटर ने उसका वर्णन लिखा है, वो आपको सुनाऊं। वो जंगल में गया शिकार के लिए गया था, वो देखा उसने कि एक हाथी जो है खड़ा है, और जंगल के हाथी से तो बहुत डर लगता है क्योंकि किसी भी समय आक्रमण कर सकता है, ये तो अपना पालतू हाथी है तो कोई भी उस पर अपने वश में कर लेता है। तो उसको थोड़ा सा भय लगा कि ये हाथी ऐसा खड़ा हुआ है
इस पर इसको पकड़ा जाए। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हाथी कुछ कहते ही नहीं, नहीं तो इतने में तो जो है हाथी भाग जाता या कि आक्रमण करने के लिए दौड़ता। इसको कोई ना कोई बात है, वो तो शिकारी था, जानता था पशुओं के बारे में, कुछ ना कुछ तकलीफ है लगता है इसको। तो और धीरे धीरे पास गया और उसने सोचा कि ऐसा चुपचाप इतना कैसे खड़ा, और ज्यादा पास गया तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी मीच दी। अपन जिनको अनुभव होगा थोड़ा गाय वगैरह का, आपकी परिचित हो जाए और उसके पास जाओ और अगर ऐसा धीरे से कर दो तो आंखें से मीच लेती है। वो उसका है कि हमें तुमसे डर नहीं लग रहा लेकिन ऐसा क्यों करते हो। तो आप इन चीजों को बहुत छोटी छोटी मानते हैं लेकिन हम क्या करें, हम तो इन चीजों को बहुत बहुत बड़ा मानते कि ये छोटी चीजें नहीं है, ये भीतर के अंतरंग के परिणामों की निर्मलता दिखाने वाली हैं। आप अगर थोड़े ही उसके बाजू से निकलते समय और अपना मन खराब कर लो तो वह मूड मार वो तैयार है गाय, और चुपचाप निकल जाओ उसे कछु ने कहो प्रेम भाव से तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था तो हाथी ने भी हाथ ऐसी आंख मूंद ली। उसने सोचा कि भूखा है तो उसने लिखा कि मैं उसको पास से 10 ठो गन्ने तोड़ करके ले आया और उसकी तरफ बढ़ाए। तो एक एक करके उसकी तरफ गन्ने, पहले तो फेंक दिए गन्ने, तो फेंक दिए तो उसने उठाए नहीं एक भी, नीचे डाल दिए तो उठाए नहीं। तो उसने अपने हाथ से एक गन्ना, इतने पास पहुंच गया कि हाथ से एक गन्ना बढ़ाया तो उसने सूंड में पकड़ के खा लिया, दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, 5 गन्ने खा लिए, छठवां दिया तो सूंड हिला दी। उसने कहा ये तो अजीब तरह का हाथी है, हाथी के भी 5वां गुण स्थान हो सकता है, सम्यक दर्शन के साथ वो अनुव्रत ले सकता है, ये उसी हाथी की है, उसने ले लिए थे अनुव्रत, लगा बाद में कि ऐसे ही होना चाहिए और उसने 5 तो ले लिए फिर नहीं लिए। अब ये वहीं दिन भर उसको देखता रहा कि क्या करता, वो हाथी चुपचाप खड़ा, किसी से कोई मतलब नहीं उसको। दूसरे दिन उसने फिर उसी समय पर फिर गन्ने बढ़ाए तो आज जो है उसने 2 ही गन्ने लिए। तीसरे दिन तो उसने गन्ना लेने से इनकार कर दिया, दिन भर देखता रहा कि उसके अलावा उसने खा ही नहीं कुछ, हमसे नहीं लिए शायद और कुछ खा लेगा कहीं जाके, जहां खड़ा वहीं पेड़ के नीचे, और 2 दिन 2 गन्ने लिए। आखिरी तीसरे दिन कोई गन्ना नहीं लिया, चौथे दिन आया तो देखा वहां हाथी है ही नहीं, अरे कहां चला गया। तो उसके पैर के निशान देख करके वो गया तो आगे जा करके एक पोखर सा था जिसमें थोड़ा पानी था, उसमें अगर हाथी बैठ जावे तो इतना भर निकल सकता बाकी डूब जाएगा इतना था। देखा कि उसमें वो खड़ा हुआ है, इतने इतना पानी है उसमें खड़ा है, अरे यहां कैसे आ गया, ये दलदल में फंस गया क्या। उसको इसने आवाज दी, अब उसकी आवाज समझने लगा था वो, क्योंकि 3 दिन उसने देखा कि ये आदमी सेवा टहल में लगा हुआ है। उसने फिर आवाज दे के गन्ना बढ़ाना चाहा, उसने कहते सिर हिला दिया और फिर धीरे धीरे उसकी दोनों आंख में आंसू थे और चुप बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे उसी व्यक्ति के सामने देखते देखते उसने बैठना शुरू किया और पूरा का पूरा पानी के भीतर बैठ गया और बस प्राण उसके अपने उसने त्याग दिए। जल समाधि जिसको कहते, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि हाथी ने 3 दिन में सब चीजों का त्याग करके 4थे दिन जल में धीरे धीरे अपनी समाधि पूरी कर ली। एक पशु भी जो है अपने विवेक पूर्वक इस तरह प्राण त्याग करता है, और अपन तो मनुष्य हैं, अपने लिए भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। उसने तो बाल पंडित मरण तो कर ही लिया, अगर अनुमति था सम्यक दृष्टि था, क्योंकि बहुत होशियार होता, एक ही जीव है जो सच्चा शाकाहारी है और कोई नहीं है, है और भी जीव है लेकिन इतना बड़ा जीव है और वो कुछ भी खा सकता था लेकिन नहीं। बहुत पवित्र होती इनकी आत्मा, किसी ना किसी वजह से मायाचारी की वजह से तेरंचायु का बंध होता है। अपन ने कहानी भी जब पढ़ रहे थे सरलता के दिन, तो मुनि महाराज जी ने अहंकार कर लिया था तेरंचायु में, हाथी त्रिलोक मंडल हाथी कौन बना था बताओ, इतनी तपस्या के बाद भी बनना पड़ा। तो ऐसा जीव है, जीव तो वो ही है, तो उसके परिणामों में निर्मलता आ सकती है। इसलिए अपन को भी जो है ऐसे उदाहरणों से अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि अपन भी शांतिपूर्वक रोज भावना भाएंगे कि मरण होवे तो अच्छे से होवे, प्राण निकल जावे, कोई आकुलता नहीं रहे, रोग शोक व्याधि न रहे और मुझे धर्म का सानिध्य मिले उन क्षणों में जबकि मेरे प्राण निकले, ऐसी संलेखना की भावना से आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि
शाश्वत सुख दर्शक यदा स्वरूप तुम्हारा। की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच बच कर काबिल निद्रा में सोता
अथवा वर शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर द्वारा दीवानी मानो जल तीनों कुल घड़ियां
भव बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे कलियां
तुम सादानी का कोई हो जग को देती जग की दिलियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश्वर मनियां ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथि गुरुवर प्रणाम
को ज्ञान के प्रकाश को आका पर भाष को भानु शिव कानी है सबो द्रव्य जान वे को बंद वेद बान वे को सफर पे जान वे को परम प्रमाणी है अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को सताय वे को भव्य